نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. Amazed by Allah's small husna, आज हम इस खूबसूरत सीरीज में से अल्लाह ताला का प्यारा नाम अल हकीम करेंगे. आप कहेंगे शायद एक नाम हमने कर लिया, तो मैं कहूंगी कि ये अल हकम था. और आप देखेंगे सिर्फ एक ये के साथ फर्क कितना बढ़ जाता है. कैसे अल्लाह सुबहान ताला का नाम अल हकीम है. अगर आप थोड़ा सा इस लफ्ज़ को उर्दू में टच कीजिए, अपने आप को इसके साथ रिलेट करके देखिए, आप इस नाम के बारे में क्या जानते होंगे. हिकमत, हकीम, खुद लफ्ज उर्दू में है, हकूमत. और सोचिए, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आप रोज़ ही देखते हैं और हैरान भी होते हैं. और हकीकत ये है कि जो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं और जो उसका अल हकीम होना है, उसमें और हमारे हकीम होने में बस एक नाम की निस्बत है. असल में तो सब कुछ उस मालिक के हाथ में है. वो हस्ती जो हमारी ज़िंदगी के हर मामले को देखने वाली, जिसने हमारे हर मामले को अपने हाथ में रखा हुआ है. तो आइए देखते हैं कि अल हकीम के साथ हम अपने इस ताल्लुक़ को कैसे महसूस कर सकते हैं. अल हकीम, अल हकम, ये दोनों नाम आप अपने सामने रखिए ताकि आप तकाबुल भी कर सकें और दोनों का मज़ा भी ले सकें. और जब दो चीज़ें तकाबुल के साथ एक साथ हो जाती हैं, तो फिर उसका असर भी हमें नज़र आता है. तो आप देखिए कि अल हकम और दूसरा नाम अल हकीम, ये लफ्ज़ इस तरीके से हमारे लाशऊर में जगह बना चुके हैं कि हम सोचते हैं कि दुनिया में किसी को भी अगर हिकमत मिलेगी तो अल्लाह से मिलेगी. और अल्लाह का हर फैसला हिकमत वाला है. कुरान पाक को भी हम कुरानुल हकीम कहते हैं. तो आप कह सकते हैं कि अल हकीम, इसके लुगवी मानी क्या है? दानाओ बीना, देखने वाला और जानने वाला. दाना अक्लमंदी के मानों में हम बोलते हैं अपने ताल्लुक के साथ, और बीना देखने वाला. अब ये लफ्ज़ चूँकि हमारी मजबूरी है, हम अपने साथ इन लफ्ज़ों को कैसे जोड़ेंगे जैसे हकीकत में हमारी समझ है. वरना दुनिया के हकीम, दुनिया के दाना, दुनिया के बीना, इसका अल्लाह ताला के साथ कोई तकाबुल भी नहीं है. लैस कमिस्लिही शैउन वहुव समीउल अलीम. लेकिन हम बस अपनी कोताह इल्मी की वजह से, अपने बहुत ही थोड़े से इल्म की वजह से अपने आप को बेबस पाते हैं कि हम अल्लाह के हर नाम का बस एक बड़ा महदूद सा एंगल समझ पाते हैं. इससे ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं. लेकिन हम इस पे भी बहुत खुश हैं कि हमारे मालिक ने हमें इधर उधर की चीज़ों से उठाकर अपने नामों की मार्फत पे लगा दिया. तो हकीकत यह है कि अल हकीम वो है जिसका हर फैसला हिकमत वाला है. और उसके फैसले दो किस्म के हैं. एक तो हमारी जिंदगियों में जो कुछ हो रहा है एक इंसान होने के नाते, और हर मखलूक के साथ उस पे उसके हर मामले की हिकमत है. इसी तरह मखलूकात में तो परिंदे भी हैं, पौधे भी हैं, सब्जियां भी हैं. और वो एक शख्स का वाक्य आपने कई बार सुना होगा कि एक दरख्त के नीचे बैठा है और अंगूरों के गोशे हैं, और कह रहा है क्या सुबहान अल्लाह, इतने खूबसूरत गोशे हैं और छोटे छोटे अंगूर इतने बड़ी बेल पे लगे हुए जो छत बनाकर ऊपर पड़ी है. और वो सोचता ही रहता है कि अंगूर जो इतना छोटा है उसको अल्लाह ने इतनी ऊंची बेल पे चढ़ा दिया है, और जो तरबूज है जो इतना बड़ा होता है उसको ज़मीन पे डाल दिया. इतने में एक अंगूर या बेर जो भी था वो उसके सर पे गिरता है. तो जब उसके सर पे गिरा तो कहने लगा कि मालिक मैं तेरी हिकमत जान गया. यानी अंगूर या बेर किसी के सर पे गिर जाए तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता. लेकिन अगर तरबूज गिर जाता तो क्या होता? तो अल हकीम वो है कि उसको पता है कि अंगूर बेलों पे लगेंगे, आम दरख्तों पे लगेंगे. अगर आम बेलों पे लगते तो बड़े ही ना होते, लोगों ने पहले ही खा लेने थे उतार उतार कर कच्चे. अल्लाह दूर से दिखाता है, अभी तरसो, अभी देखो. और इसी तरह से मोटे मोटे तरबूज, और इसी तरह खरबूजे और मेलन उसने रखे. फिर इसी तरह से उसकी हिकमतें उसकी दीवी शरीयत में भी छलकती हैं. आप में अल्लाह सुब्हान तआला की शरीयत को जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या कभी आपको महसूस भी हुआ इस बात का कोई फ़र्क, कोई एहसास, कुछ लगा भी कि आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी? तो फिर मेरे आपके मालिक जिसका नाम अल हकीम है, वो दाना व बीना है, वो हिकमतों वाला है. और इसका मादा अगर आप देखें तो हा काफ मीम है, हकम. बाप फाइल है, फाइल, जिसमें फिर वही देख लीजिए हकीम, सलीम जैसे हम बोलते हैं, रहीम, और पिछले ही नामों को देखिए रकीब, कंटिन्यूटी है. तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हिकमतों वाला, बेहतरीन फैसले करने वाला, पुर हिकमत तदबीरें करने वाला, इस्तलाही मानी देखिएगा इस नाम के, हिकमत वाला और हर बेहतर चीज को सबसे बेहतर अंदाज में समझने वाला। गौर करिए इस पे, हिकमत वाला और हर बेहतर चीज को सबसे बेहतर अंदाज में समझने वाला। चीज भी बेहतर और उसको बेहतर से समझता। हमें बाज दफा उसके कामों की हिकमतें समझ नहीं आती, लेकिन उसको पता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो बजाहर एक इंसान को बड़ा अजीब भी लगे, लेकिन वो काम कितना खूबसूरत है। तो वो जात जिसकी तदबीरों में कोई खलल नहीं आता। हम 10 दफा प्लान करते हैं, फिर ढा देते हैं। कितने इरादे बनते और टूटते हैं, कितनी नियतें करते हैं, कितने प्लान्स बनते हैं, फिर टूट जाते हैं। लेकिन उसकी तदबीरें इतनी पर हिकमत है। और आप अपने लिए लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा साइन है। आप जो करते हैं सोच के करके, फिर जब कर लिया तो बाद में कभी प्लान नहीं चेंज किया, तो मान लीजिए कि अल्लाह ने आपको हिकमत दी है। और अगर करके भी, करने के दौरान, क्या एक दिन पहले भी कहते ना ही करें, छोड़ ही दें, और करके भी पछताना है तो फिर छोड़ दें, तो मान लीजिए कि हिकमत की कमी है। इसी तरह वो जात जो हर चीज को इसकी जगह पर हिकमत और इंसाफ के साथ रखती है, उसने आपको मुझे उसकी जगह पर रखा हुआ है। हम जिस काबिल थे ना, अल्लाह ने वहीं रखा हुआ है। कहते हैं कि हीरे को किस अंगूठी में जड़ना है ये पता होता है सुनार को। हीरे को वो कभी लोहे की या चांदी की अंगूठी में नहीं डालेगा कि कच्ची या टूट गई तो गया, खैर। उसको या तो प्लेटिनम में डालेंगे या वाइट गोल्ड में डालेंगे, और मोटा सा जंगला होगा उसके इर्द गिर्द कि कहीं इधर से उधर, उधर से इधर ना हो जाए। इसके बरक्स आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लें, देखिए घर आने तक कितने नग झड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, शीशा ही था ना। तो लिखिए जरा, अल हकीम वो है जो अपनी हिकमतों के साथ लोगों की कदर करता है। रिश्ते नाते करते वक्त इस जुमले को बहुत देखा करें। जो बहुत कीमती लोग होते हैं ना, अल्लाह उनको फिर बड़े जड़ाव में और कीमती लोगों के हाथों में दे देता है कि उसकी कदर कर सके, उसके साथ रख सके। वरना लोग हर दिन पार्टनर बदलते हैं, लड़की लड़के को, लड़के लड़की को, और चलो ये नहीं तो वो। तो दुनिया में आम लोग बहुत होते हैं, हीरो और डायमंड्स की तरह के लोग बहुत थोड़े होते हैं। तो अल हकीम वो है कि उसको पता है कि आयशा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनाना, अत्तय्यिबीन लित्तय्यिबात और तय्यिबात लित्तय्यिबीन। और अल्लाह को पता है कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ही हो सकती है, इसीलिए कह दिया वमरतुहु हम्मालतल खतब। तो ये रिश्ते नाते उसने अपनी हिकमतों से जोड़े हैं। किसको किस घर में रखना, किसको 1 लाख देना, किसको इससे ज्यादा देना। कुछ तो 1 लाख दे दो, जाके बंदा मारेंगे। इतना ही बर्तन था, अल्लाह उनको 99,000 ही देता है, क्योंकि कल जाके मारी ना है किसी को। इतने शोबास अपने कपड़ों से ही निकलेंगे। और कुछ को अल्लाह सुबहान तआला थोड़ा नहीं देता, ज्यादा देता है, क्योंकि वो बारिश की तरह बरसाते हैं अपने, दूसरों पे भी और अल्लाह के रस्तों में भी। इसी तरह ठीक बात कहना, सही काम करना और मुनासिब अफाल करना ही इसकी सिफात है। यानी आप कह लीजिए हर चीज ठीक, सही, मुनासिब, ये है अल हकीम। अब जब अल हकीम की बात है तो सवाल ये कि हिकमत क्या है। तो हिकमत, जिन्होंने हिकमतुल बालिगा किया, शुरू की मरहले 4 क्लासेस में सिर्फ लफ्ज हिकमत और उसके अराउंड बात हुई थी, उनको तो याद आ जाएंगे सारे जुमले, लेकिन हमारे अपने साथी और हमारे लिसनर्स के लिए क्या है, सही वक्त पर सही फैसला करना, काबिले फहम गुफ्तगु, मौजू तदबीरें उर्दू में भी बोलते हैं ना, और इसी तरह लगाम डालना, जानवर को कहाँ लगाम डालनी, कश्ती को कहाँ रोकना है, एंकर डालना। हिकमत क्या है, वद्दु शैयुन, चीज को उसकी बिल्कुल महल पे रखना, ठीक तरीके पे रखना। तो अल्लाह सुब्हान तआला अल हकीम है ना, उससे कभी ये ना कहे। बाज़ लोग गलती से कहते हैं, मैं अभी दोहराऊंगी तो आप समझ जाएंगे। मसलन कोई कहता है कि अल्लाह को गलती लगी है, अल्लाह ने बस किसी की चीज किसी को दे दी, मेरे साथ तो बस ये अल्लाह का मामला ऐसा ही है। अगर कभी भूले बिसरे भी आपने ऐसे लफ्ज बोल दिए तो तौबा कर लीजिए। अल्लाह को भूल नहीं लगती, उसको गलती नहीं लगती। ये कुरान कहता है अल्लाह सुब्हान तआला अपने बारे में कि तेरा रब भूला हुआ नहीं है, उसको भूल नहीं लगती। फिर इसी तरह से जब आप हिकमत की बातों को सुनते वक्त अल हकीम के बारे में मजीद जानते हैं, तो सलफ सालेहीन के कुछ अकवाल हमारे सामने आते हैं। मसलन इमाम गजाली कहते हैं, इसकी जात और सिफात बेमिसल है, जिसकी पूरी मार्फत भी इसके सिवा किसी को नहीं। लिखिए, दुनिया में हिकमत से काम करना बहुत थोड़े लोगों को आता है, लेकिन जब कोई पुर हिकमत शख्स कोई फैसला कर दे, कोई बात कर दे, तो लोग एडमायर कर देते हैं, कहते हैं बहुत सही फैसला किया इन्होंने। लेकिन अल्लाह इतना अल हकीम है कि जब वो हिकमतों के साथ कोई काम कर देता है ना, तो लोग इतने भी हिकमत वाले नहीं है कि उसकी हिकमतों को जान सके। और शायद मेरी ये बात भी ना आप समझ सके, मैं आपको समझा ही ना सकूं, इतनी गहरी बात है। अभी शादी को 1 महीना होता है और शौहर फौत हो जाता है। अकलौता बेटा, 6 बहनों का, शादी के 1 से 2 साल बाद मर जाता, किसी को नहीं हिकमत समझ आएगी। 6 बहनें रोने वाली, माँ रोने वाली, दादी रोने वाली, नई नवेली दुल्हन रोने वाली, बाद में पता चला उम्मीद भी है, और 1 साल में पता चला बेटी हो गई। ये 8-10 औरतों को रोता छोड़कर एक जवान बच्चा अल्लाह के घर चला गया, हमें उसकी हिकमतें नहीं समझ आती। और इसको महसूस करना है तो सूरतुल कहफ में वो वाक़ याद कीजिए जो मूसार मूसार उनके उस्ताद खिजर का था। तो हमें तो उसकी हिकमतें भी नहीं समझ आती। अपनी ज़िंदगी का कोई मामला सोचिए पीछे जाकर। अच्छा, कुछ लोग इतने सीधे होते हैं, उनको आखिरी वक्त तक नहीं समझ आता हमारे साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ है। गिले शिकवे कहिए रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना। जितना अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, आपको अल्लाह के फैसलों की हिकमतें समझ आ जाएंगी। फिर सर इब्ने जरीर तबरी कहते हैं, हिकमत से मुराद कुरान और सुन्नत है, यानी दावत का तरीका इन्हीं दोनों की रोशनी में मुतय्यन कीजिए। जी, ये तो अल्लाह ने कुरान पाक में 3 बार कह दिया ना, युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। हिकमत कुरान है, सुन्नत है। और याद रखिए कि हिकमत का सिरा भी कुरान सुन्नत में है। आप जितना ज्यादा इन चीज़ों के अंदर आगे आते जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे इस बात को। किस बात को? कि वो हस्ती कैसी खूबसूरत हस्ती है। जब आपने अल हकम देखा ना, तो उसमें अटल फैसले थे, लेकिन सिर्फ एक ये के फर्क से पूरे के पूरे मन ही नहीं बदलते जा रहे। फिर इसी तरह से फतहुल बयान के राइटर कहते हैं, हिकमत से मुराद ऐसी सही और सरीख बात है जो हक को वाजे कर दे और हर शुबे का इजाला कर दे। क्या बड़ी बात है! आप देखिए, सही और सरीह बात क्या होती है? कौलन सदीद, कौलम बलीग, सीधी बात कीजिए। कुछ लोगों की बात सीधी जाकर दिल पे लगती, दिमाग पे लगती। कोई बच्चा है, वो बात सीधी करते फौरन समझ आ जाती, कुछ मिमी करते रहते। तो अल्लाह सुबहाना ताला कैसे हिकमतों के साथ सीधी बात को ले आता है? तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला की बात तो हक ही है पहले ही। फिर इसी तरह अल्लामा इब्ने जरीर रहमहुल्ला कहते हैं, अल हकीम जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जिसकी तदबीरें मजबूत हैं और इनमें कोई खलल और रुकावट नहीं आती। कोई खलल और रुकावट नहीं आती मेरे रब के किसी मामले में। आज आपको तदबीरों की बात दिख रही है ना, जरूर सोचिएगा जिंदगी में अपना, किसी का, आपकी फैमिली में, आपकी कजन्स में, आपके बहुत क्लोज सर्कट में किसी के साथ कोई ऐसा मामला हुआ होगा, किसी को नहीं पता क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, लेकिन वक्त ने दिखाया कि उसमें अल हकीम की कितनी हिकमतें थी। तो उसकी फैसले वही जाने। और देखते हैं अल हकीम का लफ्ज़ कुरान पाक में कहाँ है, कैसे है। आप हैरान होंगे कि अल्लाह सुबहाना तआला का ये नाम कुरान पाक में 94 टाइम्स आया, 94, क्योंकि अल हकीम बड़े इल्म और हिकमत वाला है। उसका इल्म और उसकी हिकमत, उसको आप और मैं तो पूरा समझ भी नहीं पाते, बाकी बातें क्या होंगी। तो कहाँ है कुरान पाक में? सूरत निसा आयत 17, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला। 5वें पारे का बिल्कुल शुरू है, यत्तबिउन शहवात, शरीयत और शहवत की बात है, और निकाह की वो 4 शरायत और लौंडियों के साथ निकाह और इस तरह के आइली मसाइल के बाद ये तस्करा है। तो गोया कि अल्लाह सुबहाना ताला कैसे है, ज़रा सी इस इमेज को महसूस कीजिए जो आपके सामने है। क्या आपको एक कतरे के अंदर फूल दिख रहा? ज़रा सा इसकी डेलिकेसी को महसूस कीजिए। इसी तरह अल हकीम के फैसले और उसके किए हुए मामले अपनी जगह बना लेते हैं। सिर्फ आपको सरेंडर करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए, कोई कहते हैं निहारी बहुत मज़े की होती है, निहारी बड़ी मज़े की है, अच्छा खिलाइए पकाइए। अब वो अभी पका रहा है, अभी जूं ही उसने आधी पका कर उसके अंदर बस आटा डाल दिया कह लें, और कोई कहते मुझे चखाओ मुझे चखाओ, अब जो ही मुंह में डालेगा ना उगल देगा ना, उसको भिगार लगा ना, उसमें लीमू लगा ना, उसका आटा पका ना, वो थिक हुआ ना, उसमें वो सारे मसाले डले जिसने उसको हुसन देना था, टेस्ट देना था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं, अभी कच्चे पके होते हैं, और हम चख के थूक देते हैं, कहते लो इस्तखारा करके रिश्ता किया था, देखो क्या हुआ, 1 महीना नहीं लड़की रह सकी, देखो देखो कैसे लोग पड़ गए सामने, किन से वास्ता पड़ गया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये कतरे, पानी के कतरे, आपको इस कतरे में जहान दिख रहा? अल हकीम के छोटे से फैसले के अंदर इतनी हिकमतें होती हैं, कि वो हर मादा के बच्चे को उसके एक मखसूस वक्त तक माँ के पेट में रखता है। कभी दिल में आता है क्या 9 महीने एक औरत बेचारी महीन सी दुबली पतली बच्ची क्यों इस मुश्किल से गुजर रही है, झट से बच्चा हो जाए। हो जाता तो वो औरत संभाल ही ना पाती। कैसे अल हकीम कतरा कतरा करके उसका वजन बढ़ा के फिर एक जीते जागते इंसान की सूरत में उस बच्चे को उस एक मासूम सी और एक दुबली पतली लड़की के हाथ में देते और आहिस्ता आहिस्ता वो उस बच्चे का बोझ सहार लेती और एक औरत बन जाती है। ये अल हकीम के फैसले हैं, उसने इतनी तदरीज रखी। और मैं सोचती हूँ अल हकीम की हिकमत देखिए, पैदा होते बच्चे को दांत नहीं दिए, वरना माँ पे कितना जुल्म हो जाता, बच्चे पे भी जुल्म होता, माँ पे भी होता। दांत की जरूरत नहीं तो दांत नहीं दिए, और जब खाने की जरूरत हुई तो एक एक दांत दे दिया। चलिए ये तो हिकमतें समझ आ गई, लेकिन जो 7 साल की उम्र में दांत झड़ जाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ अल हकीम को पता था कि बच्चों ने मीठा खाना है। चले पहले वो चीनी और शक्कर का गुड़ खाते होंगे, आज चॉकलेटें खाते हैं, 7 साल में उनके दांत ही खराब हो गए। चलो कोई बात नहीं, जाओ फरिश्तों नए दांत दे दो इनको डाल के। अल हकीम, लेकिन फिर जो अगले दिए फिर वो अब हम अपने ज़ाया कर दें तो हमारी बात है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लफ्ज़ अल हकीम में वुसत भी है, हिकमत वाला वुसत वाला। अलबा से पढ़ने के बाद और कल से पढ़ाया आपको, इसे पिछला नाम ही था। वैसे दिल बड़ा अल्लाह ताला के मामलों में खुश है, लेकिन जब ये पढ़ता है इंसान तो फिर तो और ही ज्यादा आता है। वाकई बात सच है कि अल हकीम अल्लज़ी ला यदखुलु फी तदबीर ही खललुम वला जललुन, खललुम वला जललुन। तो उसके फैसले, उसकी हिकमतें, उनकी चीजों को कोई भी नहीं आगे पीछे कर सकता। फिर इस तरह सूरत निसाही की आयत 130 में आता है, वकान अल्लाह वासियन हकीमा, और अल्लाह ताला वुस्सत वाला और हिकमत वाला है। उसकी वुस्सतें, उसकी हिकमतें, उसके क्या ठिकाने, कैसे उसको देखें। और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को इरशाद होता है, पहली ही आप देखिए वही है, और अल्लाह मूसा को वादिय तीह में तूर के दामन में खड़ा करके हुक्म देते हैं और पुकारते हैं, या मूसा इन्नहु अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, वो तो उधर है, और यहाँ क्या है कि या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, सूरत नमल की आयत नंबर 9 है ये। ए मूसा सुन, बात ये है मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बहिकमत। यानी मूसा को नहीं समझ आ रहा कि ये आधी रात को मैं इधर क्यों आ गया और मेरे साथ ये सारा मामला क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहां खड़ा करके बता दिया कि मेरे सारे कामों में हिकमत है। ये बिल्कुल ठीक वक्त है आपको नबूवत देने का, क्योंकि आप दोबारा फिरौन के दरबार में जाने वाले हैं और मिस्र में जाएंगे तो आपको ऐसे थोड़ी लेके जाना है हमने। फिर आप देखिए कि अल हकीम को जब आप हिकमत अता करने वाले की सेंस में देखते हैं तो आपको सूरत बकरा की आय 269 याद आ जाती है, यू तिल हिकमत मई यशा, वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है। और क्या लफ्ज है, वह मई यो तल हिकमत फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा, और जो कोई दिया गया हिकमत तो खैर कसीर दिया गया, तो फिर आपको खैर कसीर मांगनी है। अभी दुआएं सीखेंगे हम इंशाल्लाह हिकमत के बारे में, लेकिन अभी इसको तो लेते ही चाहिए। फिर इसी तरह अल हकीम का लफ्ज़ कैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। कहाँ है ये बात, दो तीन जगह, जिसमें से एक सूरत बकरा की आयत 129, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की दुआओं के बीच में ये दुआ कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम से घर बनवा लिया और फिर जब घर बन गया तो उन्होंने फिर दुआ की कि अल्लाह रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, ए अल्लाह अब कोई ऐसा भेज इधर के जो इन सारी चीज़ों को करे, यानी गोया के घर बनवा दिया मैंने, अब तू उस्ताद को भेज दे। तो गोया कि आप किताब और हिकमत के उस्ताद थे, अल्लाह हमें भी इन दो चीज़ों के साथ ऐसे जोड़ दे कि दिन रात इसमें गुजर जाएं। आज दिल सरशारी से शुक्र के जज्बे से भरा हुआ है, सिर्फ 3 दिन, यानी आज से पीछे कल और कल से पीछे बंदे, 3 दिन में पूरे कुरान से गुजर गए। जिन लोगों ने हमारे साथ खुलासे कुरान SJ 2018 किया है तो वो इस चीज़ के गवाह होंगे कि पूरा कुरान ऐसे लगता है 3 दिन में सामने आ गया। और मैं किसी से जिक्र किया कि आज हम तो मान नहीं रहे, 10 पारे किए आपने, मैंने कहा जी आज हमने 10 किए, 10 10, तो करे वाह ये तो कैसे हो सकता है, मैंने कहा वो कम से कम मुद्दत 3 ही दिन की है ना कुरान पढ़ने की, तो अल्लाह ने करा लिया, शुरू किया तो हो गया, जैसे तैसे भी हुआ होगा, नहीं अच्छी तरह समझ आई तो कोई बात नहीं, हो तो क्या ना। तो ये तहें आपके अंदर मिठास लाती हैं, इतने मुख्तसर अरसे में जहाँ जहाँ कोई आयत आती बाद में आपको याद होगी कि अच्छा हाँ सबीलुल जन्ना में तो इतनी देर लगी थी, अब ये इधर है, अच्छा इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको जज्ब होता है। और वो जैसे केक में बहुत सी लेयर्स होती है ना, कहीं क्रीम है तो कहीं पाइन एप्पल है और कहीं ऊपर स्ट्रॉबेरीज हैं। बार बार कुरान सुनी और एक ही जगह सुनते सुनते आप जब उस पर कई अंदाज लगा लेते हैं ना, तो फिर आपको वाकई एक हारमनी और एक सिमिलैरिटी भी महसूस होती है। फिर इसी तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत कैसे अता फरमाई अल्लाह ताला ने, सूरत स्वात आयत नंबर 20, वआतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, और हमने उनको हिकमत दी और बात का फैसला करना सिखा दिया। यानी हिकमत देता भी है और खुद भी साहिब हिकमत है। अल्लाह सुबहान तआला की ये बहुत बड़ी शान है कि वो कैसे बंदों के साथ ये सारे मामलात करता है। और फसलुल खिताब के हज़रत दाऊद के बारे में शायद आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत अच्छी बात करने का तरीका सिखाया था। यानी फसलुल खिताब जुदा जुदा, फसल यफसलु क्या होता है, तफसील भी इसी से लव के, बात करते थे तो बड़ी क्लियर। यानी कुछ लोगों की बात ऐसी होती है ना, बस समझ आती है। अच्छा कुछ बातें दिल में उतरती हैं, दिल कर तो और सुने, और कुछ बच्चा भी अपना बोलेगा तो बस चुप चुप, तुम्हें बात ही नहीं करनी आती। तो दुआ किया करे अल्लाह फसलुल खिताब दे। औरतें रोती हैं, नाक पोंछती हैं, बात ही नहीं समझा पाती, कहा करे अल्लाह फसलुल खिताब दे। कोई बात समझाने लगे और ही उलझा देता, तो उलझाना नहीं है, बातों को सीधा सीधा रखना है। और फिर इसी तरह से दीन की तरफ हिकमत से बुलाने का हुक्म आपको मुझे दिया अल हकीम ने, सूरत नहल, उदु इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, सेकंड लास्ट आयत है सूरत की, 14वें पारे की आखिरी आयतों में से एक आयत। उदु इला सबीली रब्बिक बिल हिकमा, अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए। और कुरान पाक अल हकीम की तरफ से है, ये कहाँ लिखा है जरा इस किताब को खूबसूरती से देखिए और महसूस कीजिए, और फिर याद कीजिए सूरत हूद आयत 1, अलिफ लाम रॉ, किताबुन उहकिमत आयातुहू सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। ये कैसी किताब है जिसकी आयतें मुहकम की गईं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से। तो आप कह दीजिए कि ये किताब खुद भी हिकमत वाली और मिली भी हिकमत वाले की तरफ से। आयात तो 94 हैं, लेकिन बाकी तो आप देखेंगे, लेकिन कुछ अहादीस देखते हैं अल हकीम से मुतल्लिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लोगों पर रश करना जायज़ है, और अल्लाह में इन दोनों में शामिल कर दे, एक वो जिसे अल्लाह ने माल दिया हो और वो इसे अल्लाह की राह में खर्च करता है दिन रात, मुसल्लत, हदीस में तो सल्लता, मुसल्लत कर दिया गया, यानी ऐसे लगता है कुछ बचा के नहीं रखेगा, सब बांट देगा। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत दी, जिससे वो फैसला करता है और लोगों को इसकी तालीम देता है। अल्लाह हमें ऐसा रखे। यानी एक माल और एक इल्म, ये दो हैं हिकमत वाली चीज़ें। आप इस इमेज को देखिए ज़रा, आप देखिए कि मट्टी, मट्टी के अंदर से एक छोटा सा पौधा और ऊपर चंद सिक्के, क्या बताती है ये तस्वीर आपको? अपने माल, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्किल्स को इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए खैर के पौधे उगें और आप खैर का पौधा बन जाएं। मट्टी में मिलकर मट्टी होने की बजाय, और उससे पहले अपने माल को, अपनी चीज़ों को अल्लाह के रस्तों में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये हिकमत की बहुत बड़ी दलील होगी। और इसी तरह से इब्ने कसीर रहमहुल्ला कहते हैं, अल हकीम जल्ला जलालुहु वो ज़ात है कि अपने तमाम अफ़ाल और अक़वाल में हकीम है, इस तरह के हर चीज़ को इसकी सही जगह पर अपने इल्म और हिकमत और इंसाफ के साथ रखता है। नोट कीजिए, अफ़ाल और अक़वाल में हकीम और हर चीज़ को सही जगह पे रखता है इल्म, हिकमत और इंसाफ के साथ। तीन चीज़ें, इल्म, हिकमत और इंसाफ। अल्लाह हमें भी ऐसे ही अपने मामलात लेने वाला बना दे। फिर इसी तरह इमाम हलीमी कहते हैं, अल हकीम जल्ला जलालुहु वो ज़ात है कि ठीक बात कहना और सही काम करना ही इसकी शान हो, और मुनासिब भी यही है कि ये सिफात अल्लाह ताला की शान के मुताबिक हों, इसलिए कि इसके अफ़ाल बिल्कुल मुनासिब और इसकी पैदा करदा चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, और ये सब बातें हकीम ज़ात के अलावा किसी और से नहीं हो सकती। जैसा कि तमाम कामों पर कुदरत इसी ज़ात को है जो ज़िंदा है, तमाम बातों को जानता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी आप देखिए कि हर एक ने बीच में से कोई ना कोई खूबसूरत बात निकाली है, तो अल्लाह की हस्ती ज़िंदा, कायम, दायम और फिर सारे मामलात को करने वाली। اور حقیقت یہ ہے کہ حکمت خداوندی اللہ جس کو دے دے یہ اللہ کی شان ہے اور اس کی بہت ساری نشانیاں. آپ کو اپنی زندگی میں بہت ساری کھلی کھلی نشانیاں ملیں گی اللہ کی حکمتوں کی. کبھی آپ نے سمندروں، پہاڑوں، جھیلوں، سرسبز میدانوں میں سفر کیا ہو تو آپ اس کا فطری حسن دیکھا کریں. روز ہی آپ کو کوئی نہ کوئی چیز دکھتی ہوگی. ہم بھی آپ کو اکثر ایسی امیجنریز اور ایسی ویڈیوز دکھاتے ہیں جس میں آپ کو نیچر دکھے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کیپ ٹاؤن دنیا کے حسین ترین مقامات میں سے ہر طرح کا فطری حسن ہے. آپ اس شہر سے ساؤتھ سائڈ پہ جائیں 70-80 کلومیٹر پر تو ایک تاریخی ٹیلہ ہے. آپ اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں راس امید، عربی میں کہتے ہیں راس الرجائے صالح، یعنی راس تو آپ جانتے ہیں امید، یعنی امید والا. کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کے آگے کچھ نہیں. یہاں سے واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا تھا اور اس مقام پر دنیا کے دو بڑے سمندر بحر اوقیانوس اور بحر ہند کا وہ سنگم ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، سورۃ الرحمن کی آیت 19 ہے نا، کہ دو دریا ادھر ہی ملتے ہیں. یہ وہ خوبصورت جگہ جہاں یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنا خوبصورت یہ منظر ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو انسان کو اللہ نے دنیا میں غور و فکر کرنے کے لیے جب بھیجا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بن جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ الحکیم کے ہر کام میں حکمت ہے. اس پورے کائنات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو دکھے گا بہت سے مظاہر. انسان اپنے جسم میں بھی غور کر سکتا ہے، مثلا سانس لینا، کھانا پینا، پیدل چلنا، یہ فطری باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں، یہ کام روز کیسے ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں آتا ہمیں. ہم پھل کھاتے ہیں، اسی وقت ہمارا جسم کیسے کیسے مختلف کاموں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ کھا کر کہاں سے کدھر لے جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کھانے کا ایک لقمہ منہ میں جاتا ہے تو نظام ہضم، جس کو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، وہ ایسے ایکٹیو ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے پوری فوج تیار ہے. پہلے آپ کے منہ کا لعاب جو آپ سلائیوا منہ میں رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے کھانے کو نرم کرتا ہے، گیلا کرتا ہے. پھر اس کے بعد دانتوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو پیستے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے پھر وہ آپ کی میری اوسوفیگس جو اسٹمک تک جانے والی نال ہے، میدے کی نالی جس کو کہتے ہیں، اس میں اتارتا ہے. پھر یہاں پہنچ کر آپ دیکھیے کہ میدے میں جو موجود نمک ہے اس کے کچھ حصے اس خوراک میں مل جاتے ہیں، اور یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایسڈ جو ہوتے ہیں، کہ وہ پورے خوراک کو ایسے جوڑ دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں. پھر وہ کھانے کے ٹکڑے جو مفید ہیں ان کو نظام ہضم توڑتا ہے، جیسے چکی نہیں چلتی، پھر اسٹمک کے اندر چکی چلتی ہے، پھر وہ ان کو چھوٹی آنت کی دیواروں میں بھیجتا ہے، وہاں وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس کو جذب کرتے ہیں، پھر وہاں سے یہ کھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذرے جو بھی اب پارٹیکلس میں جا چکے یہ خون کی ندی میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح چھوٹی آنت کے اندر کی سطح پر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ٹینڈرلس ہوتے ہیں نا، ان کو ویلائز کہتے ہیں. اس کے سب سے اوپر والے حصے میں جو خلیے ہیں ان کو آپ خوردبین کے نیچے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے، مائکرو ویلس کہتے ہیں اس کو. تو یہ سارا کون کر رہا ہے؟ الحکیم کر رہا ہے. پورے جسم کا حصہ بناتے ہیں، جسم میں کتنے پمپ چل رہے ہیں، کتنی خوراک جسم میں رہنی ہے، کتنی خوراک واپس جانی، خون میں جانی، کتنا آگے جانا، کتنا پانی، پھر ہمارے گردوں میں جانا، پیشاب بننا، کون سوچ سکتا ہے؟ آپ اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ کام کیسے ہوتے ہیں. میدے تک پہنچنے پہنچنے میں ایک چیز اتنی آگے گزر کے آگے ہوتے ہوئے پھر آپ کو طاقت دیتی ہے، اور اگر یہ کھانا آگے نہ جائے تو ہمارا میدہ ہی گل جائے، وہ میدے کے اندر جو تیزاب ہے وہ اسی کی وجہ سے سب ضائع ہو جائے. تو اللہ کے ہر معاملے میں حکمت ہے، تدریج ہے، ارتقاء ہے. اللہ نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے کیا ہے، اور الحکیم کی حکمت کے کرشمے جتنا آپ دیکھتے جائیں گے آپ کہیں گے کہ کائنات کے نظام میں حکمت ہے. کتنی بارش ہو، کہاں نہ ہو، برف ہو، اولے پڑے، ہوا چلے نہ چلے، صبح و شام، رات دن، موسموں کا تغیر، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے جو بنا دیے وہی بنا دیے، کوئی چیز نکمی نہیں ہے اس قدرت کے کارخانے میں. آپ اور میں کس طریقے سے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن سوچیں گے تو دل بند ہو جائے گا. پھر اسی طرح دیکھیے شرعی احکامات ہیں، اس میں حکمت ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینی ہے، نہیں لینی، कैसे दाखिल होना है, हिकमत है सारी। औलाद में अदल करो, हिकमत है। बेटे बेटी के साथ कैसा मामला, बराबरी का मामला, हिकमत है। वसीयत, माल, विरासत की बांट, हलाल और हराम के अहकाम, इन सब के अंदर आपको अल हकीम की हिकमतें दिखती हैं। और ये जो चंद बातें आपको इंसानी जिस्म की बताई हैं ना, अल हकीम की हिकमतों का शहकार, तो ये सब कुछ आपको मुझे बताते हैं कि अपने जिस्म पे जुल्म नहीं करना चाहिए। आप जो कुछ इस दुनिया में अपने जिस्म में देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर जितनी मशीनें लगा दी जो तंदुरुस्त तवाना रखती हैं, हमारे ज़ाहरी अज़ा अल्लाह ने कैसे मुनासिब किए, बेहतरीन तरीके पर रखे, तो क्या वो बंदे को पर्पसलेस रखेगा? नहीं। लिखिए, अल हकीम ने इंसान को बा मकसद पैदा किया। अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान को हैवान से बेहतर बनाया, क्योंकि हैवान का सरोकार सिर्फ खाना पीना है और अपनी नस्ल की अफजाइश, जबकि इंसान की तख्लीक का बहुत बड़ा मकसद है। इंसान अपनी अक़ल से काम लेते हुए अल्लाह तबारक ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करता है, और फिर उसके बाद अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करे, यही मकसद है। तो आपको अल्लाह ताला ने बेकार नहीं पैदा किया, और अल हकीम जल्ला जलालुहू की हिकमत के करिश्मे कायनात की कोई चीज़ बेकार नहीं है। ये भी एक हिकमत की बात है। और हिकमत वाली खवातीन घर में खाना ज़ाया नहीं करती, पकाते हुए कुछ पकाने में सिंक में, और कुछ पका हुआ बर्तनों में छोड़ना और 2-4 दिन बाद फ्रिज से निकाल कर फेंकना, ऐसे नहीं करती। तो आप कह सकते हैं कि अल हकीम वो है कि जिसने हर चीज़ को किसी न किसी हिकमत के साथ पैदा किया है और मसलियत के साथ पैदा किया है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि नहीं कोई चीज़ नकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लाह ने सब कुछ रखे, हर एक के अंदर कोई खैर है, हमें नहीं पता चलता। हम ऐसे ही कहते हैं बुरी चीज़ है, मतलब हम कहते हैं सांप बुरा, बिच्छू बुरे हैं, लेकिन ये सांप और बिच्छू ख़त्म हो जाएं तो इतने कीड़े मकोड़े और हशरात निकल आएं कि हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ करके आपको मुझे दिखा दिया कि मैं कोई काम बिला मकसद नहीं करता।